సర్వకల్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణాం నమః సమయ సారాయ స్వామి స్వభావాయ భావాయ వందే తు సర్వ సిద్ధే ధూమ చలమానో వయం గతి పత్తే గోచ్ఛామి సమయ పావుర విమోక్షితే. భగవాన్ కుందకొండ ఆచార్య దేవి కి ద్వారా కిసి ధన్య ఘడీ మే రచా గయా మహాన్ గ్రంథ సమయ సార పరమాగం శాస్త్ర హై और अष्टांगी का महापर्व का आज अंतिम दिन कार्तिक माह की अष्टांगी का नंदीश्वर देव में बहुत धूमधाम के साथ देवता लोग इस अष्टांगी का के महामहोत्सव की पूर्णाहुति आज कर रहे हैं और ऐसे में अपने सहज रूप से सहज क्रम में जो समय सार में स्तुति की गाथाएं अपनी चल रही है उस स्तुति की गाथाओं में 33 नंबर की गाथा आ जाई है और ये 33 नंबर की गाथा जिनेंद्र परमात्मा की वह निश्चय स्तुति है कि जिसके होने पर केवल ज्ञान और आज जो स्तुति है वो स्तुति भाव्य भावक भाव के अभाव से यानी सीधे ये स्तुति का प्रारंभ होता है तो ठेठ केवल ज्ञान पर ही मैंने जिस श्री शंकर परमात्मा की निश्चय स्तुति ये कही जा रही है तो जिस केवल परमात्मा की निश्चय स्तुति का ये प्रकार कहा जा रहा है इसके फल में वो केवल ज्ञान दशा प्रकट होकर ही रहती है। ऐसी उत्कृष्टतम स्तुति की आज अपनी चर्चा है। बहुत अच्छी गाथा है। देखो जिद मोह सदु जैया हीनो मोह हवे जसाहु सैयाहू हीन मोह इसका हरि गीत देखेंगे जिस मोह साधु पुरुष का जब मोह क्षय हो जाए परमार्थ भी क्या यक पुरुष की मोह तब उनको कहे क्या बात कही है देखो इसमें कि जिसने मोह को जीत लिया है कैसा जीता समय सार में ये शैली है प्रवचन सार में ये शैली है अमृतचंद्र आचार्य देव की भी शैली है कुंतकुंड आचार्य देव की भी शैली है कि मोह को ऐसा जीता अब वो कभी युद्ध करने के लायक ही नहीं रह सकता खड़ा होने के योग्य ही नहीं रह सकता ऐसा पलायन कर गया अब सादी अनंत काल तक उस मोह का कभी अपने को सद्भाव नहीं होगा ऐसा उन्होंने मोह को जीता अब सादी अनंत काल तक नहीं आएगा ऐसा कार्य जिस जीत लिया है, ऐसे साधु के श्रेणी की बात है नहीं, सबक श्रेणी की बात है। जब मोह छीन होकर सत्ता में से नष्ट हो, उसमें क्या था, मोह उदय में से उदय में नहीं रहता था लेकिन सत्ता में पड़ा रहता था। और यहां क्या हुआ, सत्ता में से भी उसका नाश हो गया। तब फिर क्या होता है, वो कहते हैं निश्चय के जानने वाले, निश्चय से उस साधु को क्षीण मोह नाम से कहते हैं। उसका नाम है क्षीण मोह। और क्षीण मोह वास्तव में 12वें अनुष्ठान में होता है। और इधर 12वें अनुष्ठान में क्षीण मोह की दशा प्रकट होती है, अर्थात दर्शन मोह चौथे अनुष्ठान में चला गया, चारित्र मोह प्रकारांतर से पांचवें अनुष्ठान में, उसके आगे आगे अनुष्ठान में जिस क्रम से जाता है चला गया, और 12वें अनुष्ठान में यानी 10वें अनुष्ठान के अंत में, समझो 10वें अनुष्ठान के अंत में सूक्ष्म लोभ का परिणाम भी चला गया। और 10वें गुणस्थान का अंतिम समय और 12वें गुणस्थान का प्रथम समय, तो 10वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ गया और उधर 12वां गुणस्थान प्रकट हो गया। चतुर्थ श्रेणी है ना, तो 12वां गुणस्थान प्रकट हो गया। और उपशम श्रेणी होती तो 11वां गुणस्थान होता है, 11वें गुणस्थान से नीचा। तो ये वो स्तुति है जो प्रत्येक मुक्ति प्राप्त जीव को, केवल ज्ञान प्राप्त जीव को, केवल ज्ञान से तुरंत पहले ही होने वाली ये एक परिस्थिति, निश्चय स्तुति जिसे अपन कहते हैं। ऐसी बहुत गजब की बात है इसमें, ये भाव्य भावक मोह को, भाव्य भावक के नाश की बात है। भाव्य भावक का कल काफी चर्चा अपन ने करी थी, कर्म के उदय का अंश, कर्म अपने को अपने अधीन नहीं करता, लेकिन हम स्वयं कर्म के अधीन होते और विकार करते हैं, विकार करते हैं तो कर्म का उदय कहा जाता है। ऐसा आता है अपने यहाँ पे, कोई परद्रव्य विकार नहीं करा, परद्रव्य राग नहीं करा, हम स्वयं राग करें तो परद्रव्य को निमित्त कहने का। अपने पौराणिक उदाहरण है, पौराणिक उदाहरण में अपने जो जम्बू स्वामी थे, वो बहुत वैरागी, इतने वैरागी उन्होंने नक्की कर दिया, करोड़पति अरबपति सेठ का इकलौता पुत्र, और वो मना कर दे कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो दीक्षा लेने का परिणाम है, उस माता पिता के परिणाम में क्या बीतती होगी ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। तो उसमें जब उनने देखा उनके माता पिता ने कि ये तो मानने वाला नहीं, उनने कहा कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, उनको दीक्षा लेनी है ना, तुम दीक्षा ले लो, तुम शादी कर लो और दूसरे ही दिन तुम दीक्षा ले लो। ठीक है, माता पिता नहीं माने तो वो ठीक है, आप जैसा कहते हो। तो उस नगर की सर्वांग सुंदरी चार कन्याओं से उनका विवाह हो जाता, और विवाह होकर के वो चारों कन्याएं घर में आ गई, और रात्रि का समय था, चारों वो कन्याएं और जम्बू कुमार, वे कन्याएं उन्हें अपने हाव भाव राग रंग से राग में फंसाने की कोशिश करे, और जम्बू कुमार उन्हें वैराग्य का उपदेश दे। अंदर में वैराग्य है तो राग का कोई निमित्त, जिसको राग का निमित्त कहा जाता है, वो राग कहने में समर्थ नहीं होता, और अंदर में वैराग्य नहीं हो तो तुम राग के निमित्तों से दूर पड़े होंगे, तो भी कल्पना में उन राग मैंने उसका रिजल्ट ये आया, जम्बू कुमार का तो वैराग्य बढ़ ही गया था, और वो जो चारों कन्याएं थी उन्होंने भी ये विचार किया हम भी इस संसार में रह के क्या करें, तो वो भी आने का बन। और गजब की बात तो ये, एक चोर उनके घर में चोरी करने आया था। उनने देखा कि अरे जिस जम्बू कुमार के पास इतना धन वैभव दौलत संपत्ति होने के बाद भी, और आज ही इनकी शादी हुई है और ये कल ही जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर रहे हैं, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने अपना जीवन चोरी चकारी में कमा लिया। कहने का अर्थ क्या है, कोई राज कोई कर्तव्य राग नहीं कराता, द्वेष नहीं कराता, इसी तरह कर्म राग नहीं कराता। और राग कहे तो कर्म के उदय को निमित्त कहा जाता है। अपने यहाँ पर एक बारिश है और पुष्पदाल की कहानी आती है। बारिश है और पुष्पदाल मुनि दोनों बचपन के मित्र थे। बारिश है राजा सैनिक के पुत्र थे और पुष्पदाल उनके मित्र थे। अब पुष्पदाल की शादी एक कानी स्त्री से हुई और उधर बारिश है हार करने के लिए नगर में पधारे। तो वो आहार करने के लिए नगर में पधारे तो मित्र को आहार देने का उनको विकल्प हुआ कि मुझे अपने मित्र को पूर्व समय के मित्र अभी तो मुनि है आहार देना है। उन्होंने आहार कराया प्रज्ञान विधि के द्वारा और एक जैसे होता है ना एक शिष्टाचार, उस शिष्टाचार के वश वे उन वारी सैन मुनिराज के साथ गए। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे अब बारिश है कुछ बोले तो भैया बहुत दूर आगे चलो घर जाओ अपने। बारिश है कुछ बोले तो अब वो उनको अब उसको तो घर जाने की जल्दी वो कहे देखो भैया महाराज जी अपन तो आपको पता है अपन गांव से 7 किलोमीटर दूर आ गए हैं और यहाँ तक तो अपन बचपन में गिल्ली डंडा खेलने आते थे। उनको मैंने ये बताने की कोशिश करे हम इतने दूर गांव से आ गए महाराज अब तो कह दो मैं चला जाऊं। लेकिन बारिश है वो तो चैतन्य घर में आने की तो कह सकते हैं, चैतन्य घर में जाने की बात तो कह सकते हैं, कुछ जड़ के जड़ घर में जाने की बात कैसे कहे। उनने कुछ नहीं कहा फिर तो चलते गए चलते गए चलते गए गुरु के पास पहुंचे और बारिश ने अपने गुरु से कहा ये हमारे बचपन का मित्र था और आप उसको भी तो जैनेश्वरी दीक्षा दिला दिया। मित्र के सामने वो भी कुछ नहीं बोल पाया जैनेश्वरी दीक्षा ले। ऐसा 12 महीने तक 12 वर्ष तक बाहर में मुनि बने का पालन करे लेकिन ध्यान किधर लगा रहा उनका उस कहानी से बहुत लंबी छोटी कहानी है। कहने का मतलब क्या कि बाहरी रूप से वो स्त्री संयोग रूप में भी उपस्थित नहीं है लेकिन राग किया तो उसको संकल्प रूप से अपने मन में उसका चिंतन किया और उधर 4 सर्वांग सुंदरियां जम्मू कुमार के संयोग में होने पर भी उनको वैराग्य, उनको वैराग्य बढ़ रहा है आए हाथों सही और बढ़ गया। कहने का अर्थ क्या कि भाई ना तो परद्रव्य राग ना तो परद्रव्य राग कराता है और ना परद्रव्य का संयोग पास में नहीं है इसलिए राग नहीं होगा। यानी राग के होने में रसाय के होने में विकार के होने में हमारा अपना ही दोष है, किसी परद्रव्य का कोई दोष नहीं। कर्म भावक कब कहा जाता है जब हमने अपने में भाव्य किया तब कहा जाता है और यदि हम अपने में भाव्य नहीं करें यदि हम अपने में विकारी परिणाम नहीं करें तो उस कर्म के उदय को निद्रा कही जाती है। एक बहुत अच्छी बात है देखिए यहाँ पे इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान से पूर्वोक्त विधान में आत्मा में एकाग्रता की जो बात है चल रही है तो आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा का अनुभव करने से जो जित मोह हुआ है क्या हुआ है पहले किया तिरस्कार और तिरस्कार का मोह का तिरस्कार, मोह का तिरस्कार माने क्या तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो जैसे अपना कोई बहुत मिलने वाला हो रिश्तेदार हो अब कोई बात ऐसी आ जाए हम क्या बोलते हैं रिश्तेदारी गई एक और बोल देते क्या बोल देते हम क्या कहते हमारा तो तिरस्कार कर लिया उसने हम तो उसके यहां मर जाए तुम्हारे है ना। इसी तरह मोह का तिरस्कार कर दिया। क्या तिरस्कार कर दिया? तो मोह मेरा कुछ नहीं, आगे आने वाला है। 37 गाथा 36 गाथा, 36 गाथा में आएगा ये मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्मूलता का। कि मैं मोह मेरा कुछ नहीं रखता, मेरा कोई संबंध नहीं। अगर आप किसी अपने मिलने वाला तो आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, मेरी ओर झांकना नहीं, मेरी ओर देखना नहीं, तो उसका तिरस्कार माना जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी ने पहले तो मोह का तिरस्कार किया कि तू मेरा कुछ नहीं रखता, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, है ना। और ऐसा करके मोह का तिरस्कार हुआ, और मोह का तिरस्कार करने के बाद अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा का अनुभव करने से, देखो मोह का तिरस्कार तो छोटे नुकसान में हो गया। एक बातें कर रहे हैं, बोलना नहीं। मोह का तिरस्कार तो हो गया, का मोह हो जाता था। मोह माने राग द्वेष के परिणाम, चैतन्य मोह की बात, दर्शन मोह तो गया, तो हो जाता था उसका भी अभाव करके चित्त मोह हुआ है, मोह को जीतने वाला हुआ है, है ना। उसे जब अपने स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से, किसकी भावना का? अपने स्वभाव की भावना। क्यों? क्योंकि मोह उत्पन्न क्यों होता है? तो अपने स्वभाव की भावना से चूकता है, अपने स्वभाव की एकाग्रता से चूकता है। तो मोह माने चरित्र, मोह माने रागादि के परिणाम उत्पन्न होते हैं, दर्शन मोह की बात नहीं। तो अभी क्या करना? तो अपने आत्मा की भली भांति अवलंबन करने से मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश हो कि फिर उसका नय न हो, जिसको अपनी भाषा में बोलते ना समूल नाश। और गुरुदेव श्री इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। एक होता, एक होती है गाय, एक होता है गधा। उदाहरण भले अपने को अच्छा नहीं लगे, भाव बहुत बढ़िया है। गाय होती है ना, गाय घास को ऊपर ऊपर से चरती है, लेकिन उसकी जड़ को सुरक्षित रखती है। समझ आ गया? ये गाय का नेचर। और गधा क्या करता है पता है? गधा उस घास को जड़ मूल से उखाड़ करके खाता है। ज्ञानी की परिणति कैसी होती है? इस अर्थ में लेना बस, जैसे वो जड़ मूल से उखाड़ के फेंकते उस घास को खत्म कर देता है, इसी प्रकार मोह की संतति को अब फिर से उसका उदय नहीं हो गए, उसको समूल नष्ट कर दिया। अगर मोह की संतति, संतति का मतलब मोह के परिवार का एक भी सदस्य अब जीवित नहीं है। क्या मतलब? अनंतानुबंधी का नाश तो पहले हो गया था, अब प्रत्याख्यान का नाश पहले हो गया था, प्रत्याख्यान का नाश पहले हो गया था, निश्चार्थ का नाश तो हो ही गया था। अभी जो संजलन बची, और संजलन के साथ में जो हत्यादि नौ कसाएं, ये मोह की संतति माने परिवार, इसका ऐसा नाश किया तो उसकी सारी संतति ही नष्ट हो गई। क्या मतलब? तो अब मोह के परिवार में कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं हो सकता, ऐसा नाम। इसको बोलते हैं आत्यंतिक विनाश हो कि फिर से उसका उदय ना हो। अब दोबारा मोह नहीं आया, जिसे शुरू में कहा था शादी अनंत काल तक अब मोह की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा मोह का नाश किया। अरे हमारे आचार्य देव ने तो देखो 80 नंबर की गाथा आई, हालांकि दर्शन मोह की बात है वहां पे, तो भी उन्होंने मोह का क्षय होता है जो जानती अनंतम तब्बत गुण तपज्जयते ही को जानते अपान वो हम जाग सस्त ले। 38 नंबर की गाथा ने कहा वो का ऐसा नाश किया है उसका अंकुर उत्पन्न नहीं होगा। एक सब जगह आचार्य देव ने इसी तरह की छह की भावना भाई। यहाँ तो छपट श्रेणी की बात है, आत्मा के विभाव रूप भाव के भाव का भी अभाव होता है। निमित्त रूप में क्या हुआ कि निमित्त रूप में जो भाव के मोह चारित्र मोह संबंधी दर्शन मोह पहले चला गया था, चारित्र मोह संबंधी जो चरम प्रकृति में बची थी उसको बोलते हैं भावक मोह। उसका जब अभाव हुआ उधर उसका अभाव हुआ और इधर आत्मा के विभाव अब रूप भाव के भाव का जैसा ये भी बताया था दसवें गुणस्थान के अंत में सबसे अंत में जाने वाला कोई परिणाम है वह सूक्ष्म लोक जिसको सूक्ष्म संप्राय बोलते हैं। उसके पहले अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष अनावरण प्रत्यक्ष अनावरण और संजलन संबंधी क्रोध मान माया इनका अभाव हो जाता है और हास्यादि नौ प्रसायों का अभाव हो जाता है और सबसे अंत में बचता है लोभ। जो उसका भी अभाव हो गया तो इधर चरम प्रकृति का अभाव हुआ और इधर विभाव रूप भाव के भाव का भी तो अपनी आत्मा की परिणति में होने वाले भाव्य भाव का भी अभाव होता है। और ये अभाव होने पर क्या होता है और भाव्य भाव का भी अभाव होता है और फिर देखो आगे क्या होता है। इस प्रकार भाव्य भावक भाव का अभाव होने से भाव्य भावक विभाव और चरम अशुद्ध उपादान रूप में अपनी परिणति में होने वाला विभाव भावलिंगी संत की बात है, श्रेणी की बात है, उनकी परिणति में होने वाला विभाव और उस विभाव में अनुकूल निमित्त ऐसा कर्म का उदय इन दोनों का भाव्य भावक भाव का अभाव होने से रहा नहीं है कुछ खत्म हो गया बाकी खत्म हो गया होने से एकत्व होने से भाव का अभाव होने से एकत्व होने से तंतोत्कीर्ण निश्चल परमात्मा की परमात्मा को प्राप्त हुआ। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ अब ऐसे अपने परमात्म स्वरूप को प्राप्त हुआ और परमात्म स्वरूप को प्राप्त हुआ मैंने संपूर्ण रूप से आत्म स्वरूप को प्राप्त हुआ पर्याय में परमात्मा बन गया। भाई 12वें स्थान में मोह का अंत हुआ 13वें स्थान परमात्म दशा का है केवल ज्ञान दशा का है ना। भगवान की स्तुति का फल भगवान पना आ गया। लेकिन कौन सी स्तुति का फल जय जय नाथ परम गुरु हो इधर का इधर की थाली का द्रव्य इधर की थाली में गया स्वाहा स्वाहा उसको स्वाहा कर रहे पता ही नहीं वो नहीं है बात। भगवान की परमात्म स्तुति का फल भगवान पना पर्याय में प्रकट है। यह है भगवान की निश्चय स्तुति व्यवहार स्तुति भगवान की करे पुण्य बनेगा स्वर्ग जाएगा मोक्ष नहीं भगवान की स्तुति से भी नहीं हुआ। हम तो पर अत्यंत भिन्न है अपने जो घर परिवार वाले हैं नातेदार रिश्तेदार हैं हम तो इनकी आव भगत में लगे रहते इनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं भैया वो तो पाप का कारण है। मित्रागी देव सांस गुरु धर्मात्मा साधर्मी इत्यादि के प्रति प्रेम हो तो पुण्य बंद का कारण है कि आत्मा के प्रति प्रेम मुक्ति का कारण तो हुई। वो यहाँ पे कहते हैं तंतोत्कीर्ण एकत्र होने से तंतोत्कीर्ण निश्चल परमात्मा को प्राप्त होता हुआ वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। कौन कहलाता है? क्षीण मोह जिन कहलाता है। उसका नाम है क्षीण मोह जिन। क्षीण मोह जिन का मतलब होता है बारवां गुणस्थान। उसका अर्थ होता है उत्कृष्ट अंतर आत्मा। अंतर आत्मा के तीन भेद होते हैं ना, जगन्य अंतर आत्मा, मध्यम अंतर आत्मा और उत्कृष्ट अंतर आत्मा। तो अंतर आत्मा की वह उत्कृष्ट दशा है और उसके बाद तो सीधी सीधी परमात्मा दशा आ गई। क्षीण मोह हो गया ना, क्षीण मोह होते ही ज्ञान के, दर्शन के और वीर्य के आवरण, मतलब ज्ञान दर्शन वीर्य का आवरण हटने वाला है। ज्ञानावाणी दर्शनावाणी और अंतरायकरण के उदय का अभाव होने वाला है। निमित्त रूप में परिणति में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत बल वो प्रकट होने। इसका नाम है भाई जीत मोह जिन। शुरुआत कहां से हुई थी जिनकी? जिनकी शुरुआत हुई थी चतुर्थ गुणस्थान। क्यों? क्योंकि दर्शन मोह को जीता था। तो चौथे गुणस्थान से लगाकर बारहवें गुणस्थान तक अगर एक दृष्टि से हम देखें, सामान्य दृष्टि से देखें, गणधर को जिन वर कहते हैं वो इनमें विशिष्टता बताने के लिए। तो सामान्य रूप से अपन देखें ना तो ये चौथे गुणस्थान से लेकर जिन संज्ञा चालू हुई और बारहवें गुणस्थान तक ये जिन संज्ञा है और अगले अगला जो गुणस्थान आने वाला है उसके बाद वो जिनवर वृषभ होता है। देखो क्या कमाल है, कैसे कैसे जीव हुए। अपने यहां पे बहुत सारी ऐसी कहानी आती है, मुनिराजों की कहानी आती है ना, मुनिराज की कहानी में उनके छोटे से लड़के को वो राज्य देकर के कोई मुनि हो गए और आत्मा का ध्यान करने लगे। और एक बार आहार का विकल्प आया तो अपने ही नगर में आहार करने के लिए गए राजा थे। अब वो राजकुमार जिसको राज देकर के आए थे छोटा था, उसने मेरा के आगे अंधेरी दीक्षा। अब वो मंत्री कह गए कैसा मूर्ख राजा है, छोटे से मंत्री छोटे से बालक को राज देकर के चला गया, बुरी बन गया। और मंत्रियों ने अपने हिसाब से राज्य का बंटवारा करके आराम से भोग कर रहे राज्य का, एकदम उन मुनिराज के परिणाम बिगड़े गए। अब वो जंगल में आ गए और उनकी मुख मुद्रा थोड़ी मलिन थी, क्योंकि क्रोध आता है ना, क्रोध में मुख मुद्रा थोड़ी मलिन हो जाती। उधर से राजा सैनिक का सैनिक की सवारी भगवान महावीर के समोसन में जा रही थी। रस्ते में मुनिराज को ध्यान मुद्रा में देखा, अपनी सवारी से उतरे और उन मुनिराज को वंदन नमस्कार किया, लेकिन उनकी मुद्रा कुछ मलिन दिखाई। जाकर के समोसन में गणगर से प्रश्न किया, बताया कि महाराज रस्ते में एक मुनिराज मिले थे लेकिन उनकी मुख मुद्रा मैंने मलिन देखी। उन्होंने कहा कि सैनिक तुम वहां जाओ और उन मुनिराजों को संपूर्ण मुनिराज को संबोधन करो, अगर जो परिणाम उनके चल रहे हैं यही परिणाम यदि उनके अंतर मुहूर्त तक चलते रहे तो सातवीं नरक की आयु के बंद के योग्य हो जाए। और आप आश्चर्य करोगे, जो ही मुनिराज को संबोधन करने के लिए राजा सैनिक उन मुनिराज की ओर जाता है, इतने में मुनिराज चलन, अरे मैं कहां राजनीति में पड़ गया, किसका पुत्र, किसका राज्य, किसके मंत्री, किसका क्या। और एकदम जो उनके परमाणु में थोड़ी विकृति आई थी उस विकृति को स्वभाव के अवलंबन से दूर करके स्वभाव में ऐसी एकाग्रता की राजा श्रेणी वहां पहुंचे, तब तक तो पता लगा कि केवल गया एक अंतर बोल सकता है केवल यानी कितना आत्मा की। अगर चार आदमियों की घर में आ जाए ना मेहमान, तो चार आदमियों की चाय पानी करने में जितना टाइम लगे अपने को, उससे कम समय में कोई मुनिराज है और श्रेणी मांडे चार पांच सात आदमियों के चाय पानी की व्यवस्था, नाश्ते पानी की व्यवस्था करने में जितना टाइम अपने को लगे, उससे कम टाइम में तो वे निराश क्यों नहीं। केवल ज्ञान में इतना टाइम चाहिए, सम्य दर्शन के लिए तो इतना भी नहीं चाहिए। सम्य दर्शन तो एक समय के लिए उपयोग पलट करके अपने स्वभाव की ओर आ जाए, ये चैतन्य की ये मैं इधर अपने स्वभाव की ओर गुना खाए। सम्य दर्शन एक झटके में ये अपने इस तरह की स्तुतियां, निश्चय स्तुति का मतलब ये है। और इस तरह ये क्षीण मोह जिन कहलाता है उनका यह तीसरी निश्चय स्तुति है। देखो ध्यान देना, तीसरी निश्चय स्तुति, इसका मतलब समझ आ गया। वर्णन के क्रम में तीसरी है, सत्य में स्तुति तो यह फर्स्ट नंबर की। मतलब क्या, ये वो स्तुति जिसके होने पर केवल ज्ञान होगा। और 31 नंबर की राधा में पहले नंबर में जिसका निरूपण किया, वो यद्यपि जगत ने स्तुति है, लेकिन वो उसको पहले नंबर इसलिए जब तक वो स्तुति जीवन में प्रकट नहीं हो, समय दर्शन की उपलब्धि नहीं हो, जितेंद्र जिन बना नहीं हो, तब तक ये जो स्तुतियां कही जा रही है 32 और 33 नंबर की राधा में, ये स्तुति जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। 32 नंबर की स्तुति फिर से दोहरा दे रहा हूँ, 32 नंबर की स्तुति, 32 नंबर की गाथा में जिस स्तुति का वर्णन किया, सभी जीवों के जीवन में उस स्तुति का होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन 33 नंबर की गाथा में जो क्षीण मोह दुष्पान वाली स्तुति, मोह को जीतने की स्तुति, मोह के क्षय की स्तुति की बात की है, सभी मोक्ष मार्गी जीवों के वो स्तुति होती है। ऐसा अद्भुत वर्णन वास्तव में किसे कहते हैं? जिनेंद्र देव की स्तुति। अपन लोग मात्र कसाई की मंदता में परमात्मा के प्रति होने वाले शुभ भाव को जिनेंद्र भगवान की स्तुति मानकर भी कृतार्थ मान लेते हैं। हमने तो भगवान की हमने भगवान की पूजा की, हमने भगवान की स्तुति की है। साधक को भी ऐसा राग आता है, अरे भावलिंगी संत को भी ऐसा राग आता है। भगवान जिनेंद्र परमात्मा पद्मनंदी आचार्य देव ने तो 7-8 श्लोक पद्मनंदी पंची स्थिति में भगवान की स्तुति कर रहे। लेकिन परमात्मा स्तुति क्या है वो समझने की बात। तो वो विकल्प आवे वो व्यवहार स्तुति है। लेकिन परमात्मा स्तुति तो ये कि जिस स्तुति का फल स्वयं वितराग का आवे उसका नाम स्तुति है। अब यहाँ पर यहाँ भी ये देखो ये जो आया ना पूर्व कथन मोह पद को बदल कर ये सब लगा लेना और इस प्रकार अन्य उपदेश को समझ लेना। अब यहाँ पे देखो इसका भाव देख लेते हैं। साधु पहले अपने बल से उपशम भाव द्वारा मोह को जीत कर, फिर जब अपनी महासामर्थ से मोह को सत्ता में से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता रहे, तब वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। ऐसी अद्भुत दशा है, अरिहंत दशा के निकट की दशा। जैसे अरिहंत दशा है ना, अरिहंत दशा सिद्ध दशा की निकट की दशा है। इसी तरह ये जो क्षीण मोह नाम की दशा है, ये अरिहंत परमात्मा के निकट की दशा। क्यों? क्योंकि 12वां दशान का अंतिम और 13वें गुणस्थान का प्रथम, उसका भय और इसका उपमान। ऐसी अद्भुत निश्चय स्तुति का अपन ने इस अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर, देवता लोग जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जो भगवान नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भगवान की व्यवहार स्तुति में लीन है, उन ज्ञानी देवों को, वहां भी सभी तरह के देव होते हैं, उनमें भी जो ज्ञानी देव है उनके अंतरंग में पहले प्रकार की निश्चय स्तुति तो चल ही रही है, और भगवान की जो उनको स्तुति का परिणाम आता है तो उसको व्यवहार स्तुति का परिणाम बोलते हैं। नंदीश्वर द्वीप में वो धूमधाम के साथ ये पर्व मनाते हैं, जो कि अपन लोग नंदीश्वर जाने की योग्यता और क्षमता नहीं रखते, इसलिए अपन लोग यहीं बैठकर उन जिनेंद्र परमात्माओं की भाव मुद्रा का ध्यान करते हुए उन जैसा ही अपना स्वरूप है उस अपने स्वरूप को पहचान कर जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश को जिनेंद्र परमात्मा के शासन की प्राप्ति को सार्थक करके अपनी आत्मा का हित करें। इसमें अपन लोगों का हित है, अपन लोगों का कल्याण है। वरना भैया दुनिया में तो जितना सिर मारेंगे उतना उलझन उलझन और उलझन के अलावा कुछ नहीं है। सभी प्रकार की उलझनों से सुलझने का मार्ग जो सुलझा हुआ चैतन्य है उस चैतन्य की दृष्टि ज्ञान और रमण का एकमात्र यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम सभी इस उपाय को करें और उसके बाद अपने जीवन में प्रथम निश्चय स्तुति प्रकट करके अथा समय दर्शन प्रकट करके ज्ञान चरित्र के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए क्षीण मोह दशा को प्राप्त करके अरिहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इसी पवित्र भावना के साथ आज की बात को यही विराम।
सहजानंदी सोत स्वरूप।